आज है 23 जून दिन मंगलवार। दिन भर के साथ मैं रेहान फदल। पाकिस्तान में हीट वेव से मरने वालों की संख्या 692 पहुंची। आम लोग बेहाल।
ये हुकूमत जिम्मेवार है, कितनी लोड शेडिंग हो रही है, बर्फ नहीं मिल रही घरों में, लोड शेडिंग की वजह से लोग भाप से मर रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही है, बेतहाशा बर्दाश्त नहीं है, बड़े बुजुर्ग हैं, अब क्या होगा ये तो हुकूमत को भी नहीं सोच रही ना।
कर्नाटक सरकार ने जयललिता को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और देखेंगे शाहजहांपुर जैसे शहर में क्या होती है स्थानीय पत्रकारों की समस्याएं।
हम आप लोगों से जानना चाहते हैं।
देखिए ऐसा है कि अब तमाम लोग मीडिया में ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने गलत और गोरख धंधों को छुपाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अधिकारियों पर अपना प्रेशर बना सकें, अपनी मजबूती दिखा सकें।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। पाकिस्तान के दक्षिण सिंध प्रांत में कड़ी गर्मी से 692 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए हैं कि इस संकट से बचने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। गर्मी से बचने के लिए केंद्र खोले जा रहे हैं और इसमें सेना की मदद भी ली जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गर्मी से अनेक मौतें हुई हैं। पिछले दिनों में कराची में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। विश्व बैंक ने घोषणा की है कि वह नेपाल को अप्रैल में आए भूकंप से उबरने और पुनर्निर्माण के लिए करीब 50 करोड़ डॉलर की मदद देगा। इस राशि का बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में घरों को बनाने में लगाया जाएगा। बैंक ने कहा कि लोगों को अस्थायी शिविरों से निकालने और स्थायी इमारतों को बसाने की सख्त जरूरत है ताकि वे इस पहाड़ी देश के मौसम को बर्दाश्त कर सकें। रवांडा के अधिकारियों ने लंदन में देश के खुफिया विभाग के प्रमुख की गिरफ्तारी की आलोचना की है और कहा है कि उनके खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। शनिवार को स्पेन के अनुरोध पर रवांडा के खुफिया विभाग के प्रमुख करेंजी कराके को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया था। 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार के सिलसिले में स्पेन के अधिकारी करेंजी कराके से पूछताछ करना चाहते हैं। फिल क्लार्क लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में लेक्चरर हैं। उनका कहना है कि स्पेन के इस दोषारोपण में कुछ खामियां हैं।
There's a sloppiness, I think, in much of the investigation that underpins this, and even very critical.
मुझे लगता है कि जिस आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया है, उस पूरी तहकीकात में ही लापरवाही बरती गई है। यहाँ तक कि जो मानवाधिकार संगठन पहले रवांडा के हिमायती नहीं रहे हैं, उन्होंने भी स्पेन के गिरफ्तारी के इन वारंटों पर सवाल उठाए हैं। ये थे फिल क्लार्क के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया में नागरिकों को जिन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए सीरियाई संघर्ष में शामिल सभी पक्ष जिम्मेदार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सीरिया के शहरी इलाकों में अंधाधुंध हवाई बमबारी की जा रही है, जिनमें सरकारी और विपक्षी दोनों दल आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के अलेपो में इस साल लगभग हर रोज सरकारी बलों ने बैरल बमों से हमला किया है और इस तरह की रणनीति युद्ध अपराध के बराबर है, लेकिन सीरिया ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कुर्दिश लड़ाकुओं के मुताबिक उन्होंने उत्तरी सीरिया के इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले एक शहर पर फिर काबू पा लिया है। ये शहर चरमपंथियों के गढ़ रक्का से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। कुर्दिश सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऐन इस्सा शहर और उसके आसपास के गांव अब उनके पूरे कब्जे में हैं। कुर्दिश सेना को सीरियाई सेना और अमरीकी नेतृत्व में किए जा रहे हवाई हमलों की मदद भी मिल रही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। पाकिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि जबरदस्त गर्मी और लू की चपेट में आने की वजह से कम 692 लोग मारे गए हैं। अधिकतर मौतें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हुई हैं। कराची में हाल के दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बात की कराची में मौजूद बीबीसी उर्दू के संवाददाता रियाज सुहेल से।
इन दिनों आमतौर पर मुल्क के काफी हिस्सों से कराची में मौसम खुशगवार रहता है, गर्मी की शिद्दत भी इस कदर नहीं रहती, मगर यहाँ के जो मेट डिपार्टमेंट है, महकमा मौसमियात है, उसका ये कहना है कि जो समुद्री हवा है वो मुनकत हो गई है। इस वजह से जो साउथ से हवाएं आती थी वो डिस्कनेक्ट हैं और जो नॉर्थ से हवाएं आ रही हैं जो कि गर्म हैं, वो उन्होंने इस दर्जा हरारत में, इस गर्मी में इजाफे का बाइस बनी है। आमतौर पर यह सूरतयाल जो होती है वो मई में और सितंबर में होती है, मगर जून में अपने तौर पर ये पहली बार इस किस्म का सख्त मौसम देखा गया है।
रियाज, ये बताएं कि आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा या हालात बदलेंगे, बारिश की कुछ संभावना है?
यहाँ के महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इंडियन गुजरात में जो लो डिप्रेशन है उसकी वजह से जो बारिशों का इम्कान बन रहा है उसके बायस उसके असरात कराची में भी होंगे और आने वाले दो दिनों में इम्कान है कि वहाँ पे खासतौर पर कराची और उसके अलावा थर पर बारिश हो सकती है। मौजूदा वक्त आज भी कोई 42 सेंटीग्रेड गर्मी का दर्जा हरारत रहा था और उसी दौरान काफी इलाकों में बिजली की अदमदस्याबी भी है और पीने का पानी भी नहीं है और इसी वजह से लोगों की तकलीफ में और इजाफा हो गया है।
एक तो लाइट नहीं है, फिर प्लस पानी भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अभी बर्फ के लिए पूरा तकरीबन ये समझ लें एक घंटे से मैं घूम रहा हूँ, एक घंटे से घूम रहा हूँ, अब जाके थोड़ी सी बर्फ मिली है, वो भी बहुत थोड़ी कलील सी।
ये हुकूमत जिम्मेवार है, कितनी लोड शेडिंग हो रही है, बर्फ नहीं मिल रही, घरों में लोड शेडिंग की वजह से लोग हब से मर रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही है, बेतहाशा बर्दाश्त नहीं है, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े एज के लोग हैं, अब क्या होगा, ये तो हुकूमत को भी नहीं सोच रही ना।
वहाँ पे जो भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और उनका कहना था कि वहाँ पे डॉक्टरों की और दवाओं की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया था, जबकि जो यहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो आजकल कराची में ऑपरेशन में मसरूफ है, रेंजर्स, उसने भी मुख्तलिफ जगहों पर राहत कैंप लगाए हैं जिसमें उनका मेडिकल स्टाफ मौजूद है। इसके अलावा सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस ऑप्शन पर भी गौर कर रही है कि जब इस कदर गर्मी है तो उसकी शिद्दत को कम करने के लिए जो मसनूई तरीके से बारिश बरसाई जाए, इस हवाले से क्या जा रहा है कि कोई केमिकल के जरिए ये मसनूई बारिश बरसाई जा सकती है।
अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान में इससे पहले कभी हुआ है कि नकली बारिश कराई गई हो?
जी, पाकिस्तान में इससे पहले माजी करीब में ऐसा कोई तजुर्बा नहीं किया गया। अगर ये होगा तो पहले बार ही कोई ऐसा तजुर्बा होगा कि मसनूई बारिश कराई जाएगी। हालांकि पाकिस्तान में एक बड़े अरसे से सूखा है और खास तौर पर जो थर जैसे सहराई इलाके हैं वहां के लोग बारिश ना होने की वजह से शदीद परेशान भी हैं।
ये थे कराची से एबीसी संवाददाता रेहा सुहेल। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बरी किए जाने के खिलाफ आज कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है। उच्चतम न्यायालय में दायर की गई अपील में कहा गया है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीते 11 मई को अन्नाद्रमुक सुप्रीमो को बरी करते हुए कहा था कि विशेष अदालत द्वारा उन्हें दोषी करार देना कानून सम्मत नहीं था। मैंने बेंगलोर फोन कर इमरान कुरैशी से संपर्क किया और पूछा कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है।
जी, एसएलपी में ये कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय गलत था। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला था कि जिस तरह से जयललिता के संपत्ति के बारे में हिसाब लगाया गया वो सरासर गलत था। जहाँ 24 करोड़ का टोटल आना था उसको 10 करोड़ बता दिया गया था। और दूसरा कारण ये भी है कि हाईकोर्ट की सुनवाई जब चली तब सरकारी वकील के गैर हाजिरी में हुई थी, तो इस वजह से ये एक एक्सपर्टेड डिसीजन बन जाता है, तो इसलिए अपील को मंजूर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट।
ये बताएं, ये जो फैसला लिया गया है तमिलनाडु में, इसको किस तरह से लिया जा रहा है? जयललिता की तरफ से कोई टिप्पणी आई है इसके ऊपर?
जी, कोई टिप्पणी नहीं आई है अन्ना डीएमके की तरफ से। हालांकि डीएमके और दूसरे पार्टी के लोग उस पे कहे हैं कि पहले ही हो जाना था, मतलब कर्नाटका पहले ही अपील फाइल कर देना चाहिए था, मगर जयललिता तो खैर अपने बाय इलेक्शन में मसरूफ हैं। और कल रात को जब वो कैंपेन पे निकली तो बहुत सारा पहले वक्त आर के नगर से बाय इलेक्शन के चुनाव में खड़े हैं, तो इसके वजह से बहुत सारा ट्रैफिक जैम वैम हुआ था कल चेन्नई में।
लीगल फ्रेटर्निटी में क्या माना जा रहा है, क्या चांसेस हैं इस अपील के सफल होने के?
जी, लीगल सर्कल में तो ये माना जाता जा रहा है कि हाईकोर्ट का निर्णय जो था वो गलत था, मगर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी इस पे, किस तरह से उसको हैंडल करेगी, इसके बारे में तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मगर एक बात तो स्पष्ट है कि इस निर्णय से जयललिता को बहुत अच्छे तरीके से सिंपथी फैक्टर आएगा, काम करेगा।
और इस पे कब सुनवाई होने की संभावना है, कुछ संकेत इसके?
नहीं, कोई संकेत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी वेकेशन में है, छुट्टियां हैं चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के, और शायद अगले महीने ही इसकी बैठक शुरू होगी, और उसके बाद ये कब केस कब आएगा वो किसी को पता नहीं है।
ये थे बेंगलोर से इमरान कुरैशी। कुछ देर पहले खबर आई है कि मुंबई जहरीली शराब कांड के मुख्य मास्टरमाइंड को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए सीधे चलते हैं मुंबई अश्विन अघोर के पास। अश्विन बताएं क्या विवरण है आपके पास?
मुंबई के मलाड मालवनी इलाके में जहरीली शराब सप्लाई करने वाला जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम अतीक बताया जा रहा है, उसको आज शाम मुंबई पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और उसे वो अभी मुंबई लाया जा रहा है। जी
आप जारी रखिए।
ये जो घटना हुई है, जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 102 हो गई है और 40 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं।
और ये जो जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनके बारे में क्या खबर है? उनमें से कुछ की हालत गंभीर है या खतरे के बाहर है बाकी लोग?
ज्यादातर जो इलाज जिनका चल रहा है उनमें से ज्यादातर लोग गंभीर हालत में हैं, उसमें से ज्यादातर लोगों को आईसीयू में एडमिट किया है, तो अभी उनकी हालत तो गंभीर बनी हुई है और उसके आगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विन अघोर। अफगानिस्तान में कल संसद पर तालिबान के हमले के दौरान बहादुरी दिखाने वाले एक अफगान सैनिक ईसा हां को वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सम्मानित किया है। कल टेलीविजन में ईसा हां को यह कहते दिखाया गया था कि उसने हमला करने वाले 6 तालिबानी लोगों को मार गिराया था। हमारे साथी इकबाल अहमद ने काबुल फोन कर बीबीसी संवाददाता सईद अनवर से संपर्क किया और पूछा कि अफगानिस्तान में ईसा खां का क्या क्या गुणगान हो रहा है।
जी बिल्कुल, आज सदर हाउस में एक अहम जलसा का, इसमें सदर मोहम्मद अशरफ गनी, चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला और सिक्योरिटी काउंसिल के मुशीर वहां मौजूद थे। इस मौके पर अफगान आर्मी के अफसर ईसा खान का बड़ा वेलकम किया गया और सदर अशरफ गनी ने उनको एक अपार्टमेंट की चाबी तोहफे के तौर पर दे दी और ये भी ऐलान किया गया कि वो आर्मी की जो रैंक है उसमें भी उनका रैंक ऊपर किया जाएगा जहाँ तक मुमकिन हो। तो कल उन्होंने जो काम किया उसके हवाले से सदर ने ईसा खान की बड़ी पजीराई की है और इसके अलावा ईसा खान की तस्वीर और जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल सोशल मीडिया में हजारों के तादाद में शेयर की गई है और आम अफगान शहरी भी सोशल मीडिया में हजारों के तादाद में लोग उसको एक नेशनल हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं, ईसा खान की फोटो को अपना प्रोफाइल पिक्चर बना रहे हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक आगे आए हैं कि ईसा खान की तस्वीर की बैनर बना के शहर के कुछ हिस्सों में लगा रहे हैं एज अ नेशनल हीरो के तौर पर।
सईद अनवर साहब, आपने कहा कि ईसा खान की इमेज इस वक्त एक नेशनल हीरो की सी हो गई है और बहुत सारे अफगान नौजवान उनको फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। इन हालात में क्या आपको लगता है कि ये अफगानिस्तान सरकार के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है जब वो देश के नौजवानों को अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी और पुलिस और दूसरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को आकर्षित करें, उनको खींचे अपनी तरफ, उसमें उनको थोड़ी सी कामयाबी मिले ईसा खान की वजह से?
बिल्कुल, ईसा खान का जो कारनामा है, उन्होंने कल जो कारनामा दिखाया जिसमें उन्होंने 6 हमला आवरों को अकेले मार दिया, ये एक अहम काम है और जिस तरह सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ ज्यादातर नौजवान अफगान उसकी बहुत वेलकम कर रहे हैं اور افغانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے نوجوان افغان سیکیورٹی فورسز کے رینکس میں ہونا چاہیے. یہ عیسیٰ خان نے جو کچھ کر دکھایا وہ نوجوانوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف زیادہ تر راغب ہونے کی اور آنے کی. لیکن مسئلہ یہ ہے افغانستان میں کہ جو سیکیورٹی فورسز خاص کر آرمی کی تعداد جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, یعنی ابھی تک 300,000 سے زیادہ ہیں, تو اسے مزید زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ افغان حکومت کے پاس مالی وسائل اس کے لیے کم ہیں, اور یہ موجودہ افغان سیکیورٹی فورسز بھی ہیں وہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے جو ایڈ فراہم کی جاتی ہے اسی کے ذریعے یہ سیکیورٹی آگے چل رہا ہے. تو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے ہاتھ آگے ہو اور سے افغان سیکیورٹی فورسز کی تعداد مزید بڑھایا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مزید افغان نوجوان افغان سیکیورٹی فورسز کے رینکس میں آئیں گے.
یہ تھے کابل سے بی بی سی سنواد داتا سعید انور. یورپ کا دیش گریس اپنی خستہ حال ارتھ ویوستھا کی وجہ سے ایک بار پھر چرچا میں ہے. کر سنکٹ سے جوجھ رہے گریس کو امید ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک کوئی نہ کوئی سمادھان نکل آئے گا. بی بی سی سنواداتاؤں کے بھیجے بیورے کے ساتھ سندیپ سونی.
یورپی یونین کے آرتھک معاملوں کے کمشنر پیئرے موسکوویکی نے گریس کے قرض سنکٹ کے سمادھان کے لیے اس ہفتے کے آخر تک سمجھوتا ہونے کا بھروسہ جتایا ہے. فرینچ ریڈیو کو دیے ایک ساکشاتکار میں انہوں نے کہا کہ پرستاووں کو انتم روپ دیا جا رہا ہے اور اس سے سنکٹ سمادھان کی سمبھاونا بڑھ گئی ہے.
Pendant cette semaine, tout le monde doit se concentrer pour trouver un accord et je suis convaincu pour vous le dire.
اس ہفتے کے دوران ہمیں سمجھوتے پر دھیان کیندرت کرنا چاہیے. مجھے بھروسہ ہے کہ ہم سمجھوتا کر پائیں گے. یہ سمجھوتا گریس اور یورو زون دونوں کے لیے مہتوپورن ہے.
پیرے موسکوویکی کے شبد. گریس نے انتراشٹری مدرا کوش سے $1 ارب سے ادھک کا رن لیا تھا جسے اسے اس مہینے کے آخر تک ہر حالت میں چکانا ہے. گریس یدی طے سمے سیما میں قرض نہیں چکا پایا تو اسے یورپی یونین سے باہر ہونا پڑ سکتا ہے. پرستاوت سمجھوتے میں کاروباریوں اور رئیس لوگوں پر نئے کر لگانے کے ساتھ ہی کچھ انیہ سدھاروں کی بھی بات کی جا رہی ہے. گریس کے لوگوں نے تازہ گھٹنا کرم پر ملی جلی پرتکریا دی ہے.
یہ مشکل بھرا ہوگا. گریس کو ایسا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے.
پردھان منتری نے پہلے کچھ وعدہ کیا تھا اور اب وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں.
گریس کا یہ سنکٹ ورش 2009 میں تب شروع ہوا تھا جب آرتھک مندی پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑ رہی تھی. لگاتار گھاٹے کے بجٹ اور ڈھانچہ گت کمزوریوں نے یوروپ میں سب سے پہلے گریس کی ارتھ ویوستھا کی کمر توڑی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ سبھی وتیہ بازاروں نے گریس سے اپنا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا. گریس کو اس سنکٹ سے ابھارنے کے لیے انتراشٹری مدرا کوش, یوروپین سینٹرل بینک اور یوروپیہ آیوگ نے اسے بھاری بھرکم قرضہ دیا. اب اس راشی کا بھگتان کرنے کے لیے بھی گریس کے پاس پیسہ نہیں ہے. ایسے میں آنے والے دن گریس اور یورو زون دونوں کی وتیہ صحت کے لیے کافی مہتوپورن ہوں گے.
پچھلے 15 دنوں میں چھوٹے شہروں میں سکریے 2 پترکاروں کی جانیں جا چکی ہیں. مدھیہ پردیش کے پترکار سندیپ کوٹھاری کی ایک مافیا گروہ نے ہتیا کر دی, جبکہ اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں پترکار جوگیندر سنگھ کی جل کر موت ہوئی. مرنے سے پہلے انہوں نے پولیس پر حملے کا الزام لگایا, لیکن پولیس کے انوسار انہوں نے آتم ہتیا کی. پچھلے کچھ سالوں میں پترکاروں پر حملے کافی بڑھے ہیں. استھانیہ پترکاروں میں خوف کا ماحول ہے. انہیں کئی طرح کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کئی بھرشٹاچار کے شکار بھی ہیں. ہمارے سنواداتا زبیر احمد حال ہی میں شاہجہاں پور گئے تھے جہاں وہ چائے پر کچھ پترکاروں سے ملے اور ان سے اس معاملے پر بات چیت کی.
اس وقت یہاں شاہجہاں پور میں کئی یہاں کے جو سینئر پترکار ہیں, ورشٹھ پترکار ہیں, ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہاں کی خبروں کو ہم سب تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لوکل رپورٹنگ جو ہے بڑی مشکل ہے. یہاں پہ بہت سمسیاؤں کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بکے ہوئے ہیں, ان کو کوئی بھی خرید سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, छोटी तनख्वाह में भी काम चल जाता। तो आज यहाँ इतने सारे पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, तो इनसे ही पूछ लेते हैं कि सच्चाई क्या है।
मैं प्रेम शंकर गंगवार हूँ, पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ।
मैं शिव कुमार टीवी चैनल लिए काम करता हूँ।
मैं मोहम्मद इरफान।
इरफान साहब, सिक्योरिटी का जब बात आती है तो कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर?
एक्चुअल में किसी पत्रकार को धमकी नहीं दी जाती है पत्रकारिता के क्षेत्र में। वास्तविकता यह है, अगर पत्रकार अपने पेशे से हट के किसी भी काम करने में लग जाए तो उसे धमकी भी दी जाती है, टॉर्चर भी किया जाता है।
आप स्वतंत्र फील करते हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप कई सालों से, तो आपको लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट?
बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ता है। जब हम लोग काम पर जाते हैं तमाम तरह की खबरें होती हैं, वैसे तमाम मौके आए हैं जब हमको फ़ोन पर धमकियाँ दी गई, ये तक कहा गया कि अभी आप रास्ते में हो और घर तक नहीं पहुँच पाओगे। चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो, वो कोशिश ये करती है कि जो पत्रकार हैं उनमें डिस्प्यूट जानबूझकर पैदा किया जाए। कोशिश उनकी ये रहती है कि वो पत्रकारों के बीच में इस तरीके की गुटबाजी पैदा कर सकें ताकि उसका सीधा फ़ायदा उनको मिल सके। तो कुल मिलाकर जो जॉब है वो बहुत टफ है। हम लोग काफ़ी रिस्की ज़िंदगी हम लोग जीते हैं।
आपके ऊपर तो लोग आके यहाँ पे गुस्सा भी दिखाया लोगों ने, तो उसको कैसे जूझते हैं आप?
गुस्सा दिखाने वाले गुस्सा दिखाते हैं और उनको दिखाना भी चाहिए। हम लिख सकते हैं, हम गाली नहीं दे सकते।
सुविधाओं की अगर बात करें, फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर आपको मुहैया कराई गई हैं, तो मैं अभी जो देख रहा हूँ कि सारे लोग इकट्ठा होकर एक दफ्तर में सारे चीज़ें शेयर करते हैं, शेयर्ड इक्विपमेंट है सारी चीज़ें, तो ये अपने आप में सिस्टम डेवलप हुआ ज़रूरत के हिसाब से या फिर आपकी मजबूरी है?
देखिए, चूँकि खबरों का लोकलाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, छोटी से छोटी सी खबर हमें कवरेज करना पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जो हमें पैसा मिलता है पर स्टोरीज़ बहुत कम है हमारे लिए, यही वजह कि हम लोग ग्रुप में काम करते हैं और जो हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है। तो ये ऐसा लगता है कि अगर हम ग्रुप में काम करेंगे तो चीज़ें बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी।
लेकिन जो एक कम्पिटिटिव एज है वो ख़त्म हो जाता है ना, कंपटीशन नहीं रह पाता।
इसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि छोटा सा शहर है, छोटी छोटी खबरें होती हैं और लगभग सभी को पता होती हैं, तो जब टीम वर्क होता है तो वहाँ पर कंपटीशन का जो कॉम्पिटेटिव जो नेचर है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, रिपोर्टिंग जो हम लोग करते हैं वो वैरी करता है कि हम अपनी रिपोर्टिंग अपने जो संस्थान है उसके लिए कैसी रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें किस तरीके क्वालिटी अलग अलग व्यक्ति दे सकता है वो उस पर डिपेंड करता है।
बात से हम थोड़ा सा एग्री नहीं हैं। जो लागत है खबर बनाने की, अलग अलग जाएंगे तो दुगना होगा, और जब एक ही मोटरसाइकिल पे हम दो रिपोर्टर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो खर्च कम हो जाता है, तो उसे कंपटीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
मतलब आप जुगाड़ कर लेते हैं बस किसी तरह से, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है आपके पास।
जुगाड़ करना मजबूरी है,
क्योंकि
कॉस्ट कटिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी।
आप अभी आए थे तो देखा था अपने की हमारा एक बड़ा खंडर नुमा ऑफिस है, वोल्टेज इतना डाउन था कि उसका पंखा नहीं चला पा रहे थे, सिर्फ कंप्यूटर चल पा रहा था। शट उतरी हुई थी, करेस्पोंडेंट है लेकिन शट उतरी हुई थी।
इस तरह की बातें आप उठाते हैं चैनल के एडिटर्स या मैनेजमेंट के साथ कि भाई इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए?
एक्चुअल में प्रदेश से और नेशनल लेवल तक ये मुद्दे हमेशा उठते हैं, लेकिन चूंकि ये मालिकानों के हक जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो किस तरह से अपने ऑफिसों को मैनेज करें अपने संवाददाताओं में, यूनियनें लगातार प्रयास करती हैं।
काम करने का अधिकार तो हमें, लेकिन जुबान खोलने का अधिकार नहीं है अपनी शिकायतों को लेकर, अपने
आज़ादी नहीं है
छुपे हुए दर्द को लेकर अपने जो लोगों से
कहना बहुत चाहते हैं,
कहना कुछ चाहते हैं लेकिन हमें शिकायत करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है।
जिस पत्रकारिता की बात कर रहे हैं आप, यहाँ सब बड़े पत्रकार हैं, पत्रकारिता का अपराधीकरण हुआ और बहुत ज़बरदस्त फर्जीफिकेशन है,
मतलब करप्शन, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं।
देखिए, ऐसा है कि अब तमाम लोग मीडिया में ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने गलत और गोरख धंधों को छुपाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अधिकारियों पर अपना प्रेशर बना सकें, अपनी मजबूती दिखा सकें। कई ऐसे माफिया हैं जो छोटा छोटा काम करते हैं, जिनको अपना उनको काला गोरख धंधा उनको कह सकते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं उसके लिए बहुत हद तक जो साझा समाचार अखबार के लोग हों, छोटे छोटे अखबार, मैगजीन, छोटे छोटे चैनल, पैसा देकर वो वहाँ से आई कार्ड खरीदते हैं, एजेंसी लेते हैं, पैसा देकर वो वहाँ से आईडियो लोगों खरीदते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल अपने गोरख धंधों को छुपाने के लिए करते
हैं। पैसा लेते हैं, जो पैसा लेते हैं वो भी करप्ट है
निश्चित तौर पर दोनों ही लोग इस सिस्टम में शामिल हैं करप्शन फैलाने में। तो कुल मिलाकर जो जर्नलिज्म है उसमें अपराधीकरण की एक शुरुआत हो गई है।
शाहजहाँपुर क्या पूरे जगह जहाँ भी हो, चाहे ज़िला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, अपराधीकरण की वजह यह है कि आदमी पत्रकार को बड़ा हाई फाई समझता है। वो सोचता है, जो छोटे तबके के लोग सोचता है कि आईएएस से हाथ मिला रहा, आईएएस इसको देखे खड़ा हो रहा, क्यों ना हम भी बने। आज पत्रकार वो लोग हैं जो पाँचवा पास हैं, कुछ बिना पास हैं, कुछ अंगूठा टेक हैं, वो केवल उसी तरह काम में लिप्त हैं कि हम जाएं अधिकारियों से मिले हैं।
गलतियां दोनों तरह में, पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत,
पूरा सिस्टम चेंज,
और सबको मेरे ख्याल से रेगुलराइज करने की जरूरत है, तनख्वाहें देने की जरूरत है।
अगर रेगुलर तनख्वाह जो भी पत्रकार फील्ड में हैं उनको अगर मिलने लगे तो 75% सुधार पत्रकारिता और रिपोर्टिंग और जो भी कुछ आउटपुट आ रहा है पत्रकारिता से उसमें देखने को मिलेगा।
आप सहमत हैं? आप तो बहुत,
मेरा एक मानना है कि तीन कैटेगरी के पत्रकार हैं और तीन वैरायटी है पत्रकारों की। पहली वैरायटी है वो पत्रकार जिनके लिए जर्नलिज्म एक नशा है स्मैक की तरह, कि उनको अगर लग गया तो उससे वो दूर नहीं हो पा रहे हैं, करना तो चाहते हैं। दूसरा पत्रकार वो है जो अपने गोरख धंधों काले कारनामों को छुपाने के लिए, अपने अपराध को छुपाने के लिए मीडिया में आ रहा है। तीसरी कैटेगरी का जो पत्रकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ऐसा पत्रकार है जो रोजी रोटी के लिए काम करता है, जिसका मुख्य व्यवसाय ही पत्रकारिता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इस समय अगर कोई परेशान है या जो हरेस्ट जो हो रहा है या सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है वो वही पत्रकार है जो
जिसका पेशा
यही है, वो यही काम करता है, उसको यही काम करना है। उसी के आगे सबसे ज़्यादा आर्थिक संकट हैं, उसी के आगे सबसे ज़्यादा जानलेवा हमले होते हैं, उसी को धमकी मिलती है, वही सबसे ज़्यादा परेशान है। बाकी जो दो कैटेगरी के लोग हैं वो मौज करते हैं।
स्थानीय पत्रकारों की समस्याओं पर बात कर रहे थे सुबैर अहमद। बांग्लादेश के साथ भारत का तीसरा मैच कल खेला जाएगा और दो मैच हारने के बाद बांग्लादेश को अब क्रिकेट समीक्षक कमज़ोर नहीं मान रहे हैं। आदेश कुमार हमारे साथ बैठे हैं, बताइए क्या संभावनाएं हैं कल?
जी देखिए, जब क्रिकेट समीक्षक भी हैरान हैं और परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान तो भारतीय क्रिकेट टीम है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझ रहे थे, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना कि विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद भारतीय टीम को आराम नहीं मिला और उसके बाद लगातार खिलाड़ी आईपीएल भी खेलते रहे तो शायद थकान का असर है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारतीय टीम तो प्रोफेशनल है, फिर आखिरकार बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने इतना ख़राब प्रदर्शन क्यों किया। और कल निश्चित रूप से जो दबाव है वो भारतीय क्रिकेट टीम पर होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जीतना कतई आसान नहीं होगा क्योंकि पहले मुकाबले में भारत को 79 रन से हार का सामना करना पड़ा, दूसरे मुकाबले में 6 विकेट से हारा, और जीत के लिए जो 200 रनों का लक्ष्य था बांग्लादेश ने जिस आसानी से केवल 4 विकेट के नुकसान पर ही 38 ओवर में हासिल कर लिया, यानी खेल के हर विभाग में बांग्लादेश बहुत ही जोर शोर से मैदान में उतर रहा है। और कल के मुकाबले को लेकर वैसे भारत के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा कहते हैं,
मुझे लगता है बहुत ज्यादा चोटिल होंगे, वो चोटिल हैं, वो मानसिक तौर पे चोट लगी है, थोड़ी सी सम्मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि जिस तरह से पहले दो मैच भारत हारा है और श्रृंखला हार बैठा है बांग्लादेश के खिलाफ, तो ठेस लगना बिल्कुल लाजमी सी बात है। और जब तीसरे मैच के लिए उतरेगी तो सम्मान के लिए खेलेगी, श्रृंखला हार चुके हैं तो कुछ खिलाड़ी अपने स्थान को बचाने के लिए खेलेंगे और बाकी सभी लोग मिलकर ये कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश का टूर खत्म होने से कम एक जीत तो भारतीय टीम के पास हो।
वैसे रेहान साहब, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बांग्लादेश जैसी जगह भारतीय टीम जीत का इंतज़ार कर रही है। हालांकि इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने दौरा किया था तो विश्व कप से पहले वहां पर भी भारतीय टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी थी, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ थी या फिर त्रिकोणीय सीरीज थी जहाँ पर तीसरी टीम एक दिवसीय मैचों में इंग्लैंड की थी। उधर हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल्स में आज महिला वर्ग के मुकाबलों में भारतीय महिला हॉकी टीम न्यूजीलैंड के हाथों 5-0 से हार गई, जबकि पुरुष वर्ग में भारत और पोलैंड के बीच मुकाबला जारी। पहले क्वार्टर तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश कुमार गुप्त। तो चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के दक्षिण सिंध प्रांत में कड़ी गर्मी से 692 लोगों की मौत हो गई है। विश्व बैंक ने घोषणा की है कि वह नेपाल को अप्रैल में आए भूकंप से उबरने और पुनर्निर्माण के लिए करीब $50 करोड़ की मदद देगा। रवांडा के अधिकारियों ने लंदन में देश के खुफिया विभाग के प्रमुख की गिरफ्तारी की आलोचना की है और कहा है कि उनके खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया में नागरिकों को जिन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए सीरियाई संघर्ष में शामिल सभी पक्ष जिम्मेदार हैं। कुर्दिश लड़ाकुओं के मुताबिक उन्होंने उत्तरी सीरिया के इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले एक शहर ऐन इस्सा पर फिर से काबू पा लिया है। बीबीसी समाचार।
इतना ही। थोड़ी देर बाद रात 9:30 बजे घटनाचक्र कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की कुणाल शर्मा ने। रेहान फतल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।